केवल कुछ घंटे से लापता है ना। इसके पहले जो तीर्थ सेवन कर रहे थे तो युधिष्ठिर को कोई पता नहीं था उस समय कौन कर रहा था। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले युधिष्ठिर क्या कर रहे थे धृतराष्ट्र के लिए? धृतराष्ट्र का पालन हो रहा था ना, और पूरा परिवार बड़ा था, सबका पालन पोषण हो रहा था। लेकिन अब युधिष्ठिर मान रहे हैं कि मैं पालन कर रहा हूं था और हमारे बिना कैसे रहे, कथम तू अनाथा, हाय हाय वे अनाथ है, उनका कोई रक्षक नहीं है, पालक नहीं है, दीन है, माम बिना मेरे बिना कैसे रहेंगे। इसका अर्थ है कि आप ही ईश्वर हैं, आप ही पालन कर रहे हैं। वास्तव में युधिष्ठिर के लिए शिक्षा नहीं है, सब यही सोचते हैं माम बिना मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। ये चिंता लगी रहती है। हमारे पिताजी बहुत चिंता करते थे हम लोगों के विषय में। हम दो आदमी जब साधु हो गए, हम और राधा रमन, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम लोग, लेकिन कोई नौकरी नहीं लिए। उसमें नौकरी मिल रही थी, नहीं किए, और विवाह भी नहीं किए। तो हमारे पिताजी बहुत चिंता करते थे कि माँ भी कहती थी कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा तुम लोगों को। ऐसे वो बार बार माँ चिंता करती थी कौन खिलाएगी, और पिता भी कहते थे कैसे मेरे बिना तुम लोग मर जाओगे खाने बिना, कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। यही हमेशा कहा करते, दो चार दिन पर तो रोज कहते थे मेरे बाद तुम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, कुछ कर नहीं रहे हो। हम लोग एक साधु के पास चले जाते थे, दिन भर वहीं रहते थे नदी के तट पर। गाली भी देते थे हमारे पिताजी, वही तुम्हारा बाप है, उसके पास जाते हो, ये करते हो, करते हो ऐसे। लेकिन माँ कभी नहीं रोकती थी। तो बताइए, आज आज पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, तो हमको भोजन नहीं मिल रहा है। दुनिया का प्रत्येक किचन हमारा हो गया है ना। कहीं भी जाने पर लोग आग्रह करते हैं क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बताइए बताइए बताइए। क्योंकि वास्तविक पिता शिवनाथ जी है। श्रीनाथ लक्ष्मी जी के, राधा रानी के पति, यही वास्तविक पालक हैं। और इस समय हमारी माँ को, हमारे पिताजी को पता भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। और उस समय वो सोचते थे कि बस हम ही पालक। यही प्रत्येक माता पिता सोचते रहते हैं, वास्तव में सब यही सोचते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन यह व्यर्थ चिंता। ये गोवर्धनधारी वास्तव में सबका पालन करते हैं। ये विश्वास रखना चाहिए। और कभी कभी तो पिता के अपेक्षा, पिता के नहीं रहने पर भगवान बहुत अच्छा पालन करते हैं। एक दिन मैं वहां था लाचुआ में, राधा जीवन प्रभु से बात हो रही थी, तो वो ये बात कहे कि अब तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन महाराज जी चिंता रहती है कि ये बच्चे फिर आगे, इनके लिए मुझे दो चिंता होती है, एक तो कि इनकी आध्यात्मिक परंपरा ऐसे ही लगी रहे, ये होना चाहिए, और दूसरा जानते ही है संसार निर्वाह के लिए धन बना रहना चाहिए। ये दो इच्छा होती है, धन बना रहे और लड़कों में ये आध्यात्मिक ज्ञान आवे, शिष्टाचार संस्कृति आए। तो मैं कहा कि ठीक है, भक्ति के विषय में तो आप चिंता कर सकते हैं, इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, मंदिर ले जाना, जप कराना है करना, उनके लड़के वैसे बहुत अच्छे हैं, पूजा करते हैं भगवान की, रीति की घर में। लेकिन जहां तक धन की बात है, इस विषय में आप चिंता मत कीजिए, वो सब ललाट में लिखा हुआ है। तो मैं उदाहरण दिया, जैसे आपके पिताजी, आपके पिताजी क्या कभी सोचे थे कि आप अमेरिका में आएंगे और इतना बड़ा बिजनेस करेंगे? कभी सोचे होंगे आपके पिताजी? तो नहीं। तो बहुत छोटे दर्जे से वो एक व्यापारी थे और हम ऐसा सोचे भी नहीं थे। तो अब जैसे आप सोचे नहीं थे आपके पिताजी, लेकिन आप इतने विकसित हुए तो आपके पुत्र भी आपके बाद हो सकता है आपसे भी बड़े धनी हो जाएं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब भगवान के हाथ में है, वास्तव में किसी के लिए ही सत्य है। चिंता से मुक्त होकर के आनंद के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बिना कैसे रहेंगे। और फिर कह रहे हैं कि ये जो आपका देह है, यह देह स्वयं ही काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथम अन्यांश तो गोपाय सर्पग्रस्तो यथा परम। यह देह स्वयं काल कर्म और गुण के अधीन है, काल के अधीन है। एक समय जन्म होता है और दूसरे समय मरण हो जाता है, बीच में शरीर विकृत होता रहता है, तो काल के अधीन है, कर्म के अधीन है। कर्म का स्टॉक है, प्रारब्ध है, तब तक है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। काल का गुण है और प्रकृति के गुणों के अधीन है, सतगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन, तो ये तो बिखरेगा ही, ये तो बस में है। तो जो दूसरे के बस में है इसका ही कोई ठिकाना नहीं है, तो ये अन्य का पालन क्या करेगा? उदाहरण दे रहे हैं कि सर्पग्रस्तो यथा अपरम। जैसे किसी व्यक्ति को अजगर ग्रस लिया है और अन्य लोगों को भी अजगर ग्रस्त किया है। मान लीजिए एक परिवार में अगर 10 आदमी हैं और 10 को 10 अजगर पकड़े, जिसको अजगर पकड़ लिया है, महाबलवान सर्प पकड़ लिया है, तो दूसरे की मदद क्या करेगा? और मदद भी कौन लोग करना चाहते हैं? जिनको ज्यादा पकड़ा है सांप। मान लीजिए बच्चा है तो उसकी तो केवल टांग भर पकड़ा है, अभी मतलब 10 बरस का है, 20 बरस का है, तो काल रूपी सर्प तो उसका केवल पैर पकड़ा है, और जो 50-60 के हो गए उनका तो गर्दन तक पकड़ चुका है ना? और वे सोचते हैं मैं रक्षक हूं, मैं बचा लूंगा, मैं पालन करूंगा। ये मूर्खता है वास्तव में। क्या बचाओ, अपने को तो बचा लो ना। सबको अजगर ग्रस्त किए हैं, तो एक अजगर से ग्रस्त व्यक्ति दूसरे ग्रस्त व्यक्ति की क्या मदद करेगा? लेकिन क्या संसार में समाचार पूछा जाता है? मान लीजिए हम लोग 10 आदमी हैं, 10 को अजगर पकड़ा है यहां तक, और खूब दांत गड़ चुका है, दर्द बुढ़ापा सब है, और पूछते हैं हाउ आर यू? फाइन। फाइन हो, जब पूरा पकड़ लेगा तो महा फाइन हो जाओ। फाइन हो, फाइन कोई नहीं है वास्तव में, फाइन वही है जिसके जिह्वा पर महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही सबसे अच्छी स्थिति है वास्तव में इस जगत में। यदि भगवान का नाम जिह्वा पर आ रहा है तो समझना चाहिए बस ठीक स्थिति है, और नहीं तो फाइन के विपरीत क्या शब्द होगा? एक वर्ड बैड स्थिति है वास्तव में भगवान के भजन बिना। हमारे भारतवर्ष में पूछते हैं क्या समाचार है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, कहना चाहिए अच्छा, क्योंकि बैड कहकर दूसरों को क्यों दुखी करेंगे, लेकिन ये तो विचार करना चाहिए कि हमको तो पूरा अजगर ग्रस लिया। मैं अपने आंख से देखा हूं अजगर ग्रसा था एक बकरी को, किस तरह पकड़ लिया था और वह मरे मरे हो गई थी, और मर ही गई, लोग छुड़ा दिए लेकिन मर गई। मैं सुना था स्कूल से एक बच्चा लौट रहा था रायपुर के पास अंबिकापुर, तो वहां उस बच्चे को पकड़ लिया अजगर, लेकिन बास्ता एक झोला होता है ना, बच्चा टांगे रहता है ऐसे, लगाया था ऐसे, तो ग्रस रहा था, ग्रस रहा था, उस किताब के झोला के कारण नहीं ग्रस पाया, मतलब बच्चा मर गया। अभी एक दो साल पहले की बात, काल सर्प सारे जीवों को ग्रस रहा है, सांप जैसे धीरे धीरे ग्रसता है, आप लोगों ने देखा होगा, धीरे 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 वैसे धीरे धीरे ग्रसता है, कैलेंडर उलटता है, 2000 बीता, 2001, 2000, फिर जनवरी फरवरी, धीरे धीरे इसके बाद समाप्त। तो जो देह इस तरह से काल कर्म गुण के अधीन है, वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा, क्या पालन करेगा? इसलिए आपको ये भावना हो रही है कि हम पालन करते हैं, यह अज्ञान है। और जहां तक आप जीविका की बात कर रहे हैं कि कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, तो महाराज ईश्वर के द्वारा निर्धारित जीविका सारे संसार में है। ऐसा नहीं है कि राजभवन में आपके परिवार के लोग ही खाते हैं और बाकी दुनिया में लोग भूखे रह रहे हैं। सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो कहते हैं अहस्तानी सहस्ता नाम, अपदानी चतुष्पदा, जिनके हाथ नहीं है वे लोग भोजन हैं हाथ वालों के। भगवान ने जीविका बनाए हैं, जीवो जीवस जीवन। हाथ होता है जैसे सिंह को, सिंह के जो अगले दो पैर होते हैं वे हाथ का काम करते हैं, वो मारता है बहुत जोर से तमाचा और ऐसे चमड़ा छीन लेता है, बहुत जोर से मारता है, हाथ का काम करते हैं, तो सहस्त कहते हैं उनको। हाथ वाले जो जीव है उनका भोजन बिना हाथ वाले हैं। तो बिना हाथ वाले कौन है? जैसे भैंस गाय, बिना हाथ वाले हैं, इनको चतुष्पद कहा जाता है। चार पैर है, अगला पैर इनका हाथ का काम नहीं करता है। तो सिंह बाघ आदि इनको खा जाते हैं, भगवान की वृत्ति है, भगवान ने इनको बनाया है। कहीं भी जहां सिंह है कुछ खाते ही रहते हैं ना, ऐसे थोड़े जीते हैं। अपदानी चतुष्पदम, और जिनको पैर नहीं है वे लोग चार पैर वालों के भोजन है, चार पैर जानवरों के भोजन है, जिनको पैर नहीं है, जैसे वृक्ष घास लता ये भाग नहीं सकते, जो पैर नहीं है तो इनको खाते हैं। फल्गुनी तत्र महतम जीवो जीवस जीवनम, और उसमें भी जो बलवान जीव हैं उनके भोजन है फल्गुनी, छोटे छोटे जीव, जैसे बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, बड़े बड़े सर्प छोटे छोटे मछलियों को खा जाते, छोटे 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 सर्पों को खा जाते। तो इस तरह ईश्वर ने सबके लिए जीविका निर्धारित की है। आप चिंता मत कीजिए कि कहाँ खाएंगे क्या करेंगे, सब जगह भोजन है, सब जगह विस्तार है, चिंता मत कीजिए। ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि अब कोई इंडिया जा रहा है तो खाना नहीं मिलेगा, या इंडिया से इधर आ रहा है तो खाना नहीं मिलेगा। कभी कभी लोग स्वजन लोग पूछते हैं, अरे आप लोग अमेरिका जाते हैं तो खाते क्या है? देखिए ईश्वर के द्वारा यहां वही वृत्ति सब जगह है, वेजिटेरियन भोजन मिलता है, बल्कि महाप्रसाद भोजन मिलता है। क्या चिंता करनी है, भगवान सब जगह भोजन देते हैं। तो इस तरह हे राजन, यह सारा जगत ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर के विधान से चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। और वही प्रभु जो इस जगत के ईश्वर हैं, अवतार लिए हैं और सारा कार्य कर चुके हैं, वे थोड़ा सा कार्य बाकी है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप इसका पता लगाते रहिए कि कब वो पृथ्वी को छोड़ने वाले, और वो जाने वाले हैं। और भगवान तो जा चुके हैं, लेकिन नारद जी विदुर जी की तरह ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग रोने लगेंगे, हाहाकार करने लगेंगे, तो नारद जी दुखित नहीं देखना चाहते थे, लेकिन संकेत कर दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए तो बहुत बड़ी चिंता का विषय ये हो रहा है कि अब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ने वाले। अब यह बात कह करके तब प्रकृत बात कर रहे हैं। अरे यह बात कहकर के अब धृतराष्ट्र गंधारी और विदुर की बात बता रहे हैं, शोक निवारण करके। कहते हैं धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम आश्रमम गतः। धृतराष्ट्र महाराज अपने भाई विदुर के साथ और अपनी भार्या गांधारी के साथ हिमालय के दक्षिण गए हैं गत। अभी तो जा ही रहे होंगे लेकिन नारद जी ऐसा बोल रहे हैं से गत चले गए हिमालय के दक्षिण मतलब हरिद्वार गए हैं। तो हिमालय तो फैला हुआ है पूरा भारत में उत्तर, तो उसमें भी कहां बता रहे हैं ऋषीणाम आश्रमम गत, ऋषियों के आश्रम पर गत। उसमें भी कहां स्रोतो भी सप्त भी जावे स्वर धुनि सप्त धा व्यधात सप्ता नाम प्रत्ये नाना सप्त स्रोता प्रत्यक्ष। सप्तर्षियों का जो आश्रम है और जहां पर सातों ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी सात धारा में बहती हैं हिमालय से निकल करके, वहां पर धृतराष्ट्र महाराज गए। सौभाग्य से हम लोगों का भी भागवत वहीं होता है सप्त स्रोत सप्तर्षि घाट कहते हैं। नहीं गंगा जी आज भी कई धाराओं में है वहां पर, तो उसमें सात ऋषियों के आश्रम पर गंगा जी अपने को फैला करके जाती थी बहती थी। हरिद्वार में ही है जी, हरिद्वार में ही है लेकिन ऋषिकेश के रास्ते में मतलब उधर हरिद्वार के बिल्कुल अंतिम छोर पर है, तो वहां गए। और स्नत्वानुसवनम तस्मिन, वे उसमें तीन बार स्नान करते हैं ऐसे बोल रहे हैं, उसमें तीन बार स्नान करते हैं अग्नि में हवन करते हैं और अब केवल वे पानी पीकर रह रहे हैं, इसलिए भोजन की आप चिंता मत कीजिए भोजन तो गया कीचे नादी सब, अब केवल पानी पीकर के रहते हैं और बहुत उपशांत हैं सुखी हैं। आस्ते विगताई सुना, अब उनको कोई तृष्णा नहीं है वासना नहीं है इधर आराम करने की। जितासनो आसन जीत लिए हैं, श्वास जीत लिए हैं, इंद्रियों को वश में कर लिए हैं, हरि भावन्या ध्वस्त रज सततमो मला, और भगवान श्री कृष्ण का वे ध्यान कर रहे हैं। हरि भावना इसको कृष्ण भावना कहते, हरि भावना में है भगवान का चिंतन कर रहे हैं, जैसा वर्णन किया गया था और जैसा उन्होंने सुना था उस तरह से भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। और वे देह को देह से मुक्त हो गए हैं, बुद्धि से भी मुक्त हो गए हैं, आत्मा को समझ गए हैं और भगवान की नित्य सेवा में अपने को लगा दिए हैं चिंतन द्वारा। कहने का मतलब वे करेंगे ऐसा ऐसा है। लेकिन भूतकाल जैसा बोल रहे हैं, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हम जा करके उनको लाएंगे, हम जा करके उनको लाएंगे, यहाँ आराम से रहेंगे करेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं तस्यांतरायो मा भू, उनमें बाधा मत डालो, अंतराय मत बनो, अंतराय मत बनो, वे सब कुछ छोड़ चुके हैं। सवा अद्ध तनाद राजन परतः पंचमें हनी कलेवरम हासती स्वम तच्च भस्मी भवसती, वे आज से पांचवें दिन या सातवें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे, तो मत बाधा दो उनको। तब कहते हैं कि ठीक है शरीर छोड़ देंगे तो मैं उनके मृतक शरीर को ला करके संस्कार करूंगा। तो नहीं नहीं संस्कार करने की जरूरत नहीं है, उनके देह से सिर से ज्योति निकलेगी और उसी से आग लग जाएगी कुटिया में और उस कुटीर के साथ उनका शरीर भस्म हो जाएगा। तब कहते तो माता गंधारी को हम लाएंगे। तब कहते नहीं वो गंधारी देखेगी कि हमारे पति जल रहे हैं तो उनके साथ ही वो भी जल जाएगी। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तब चाचा को लौटा लाएंगे। तो नहीं चाचा अब चल देंगे तीर्थ में, फिर हस्तिनापुर नहीं आएंगे वे, इस तरह से नारद जी ने कहा। और वास्तव में जब धृतराष्ट्र महाराज जल रहे थे और गंधारी भी, तो विदुर जी बहुत प्रसन्न थे, शोक भी हो रहा था कि भाई का संग छूट गया, ये सोच करके शोक हो रहा था, लेकिन भाई भगवान कृष्ण को पा गया लास्ट में, इतनी शुभ गति हुई, इसे बहुत खुश थे। एक तो सिर से ज्योति निकलना, आग निकलना, यह भी एक प्रमाण था कि ठीक भावना है। जैसे योगी शरीर छोड़ते हैं वैसे शरीर छोड़ा धृतराष्ट्र महाराज ने भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए। तो विदुर जी हर्ष में भी थे और शोक में भी थे। अपने भाई की शुभ गति देख करके हर्ष में थे, लेकिन वियोग हो गया भाई के साथ, इसलिए दुख का अनुभव कर रहे थे और चले गए तीर्थ में। विदुर जी भी शरीर छोड़ना आप चाहते थे, तो वे उस स्थान पर गए गुजरात में, प्रभास में गए, जहाँ जादवों ने शरीर छोड़ा था वहाँ वे जग गए, उसी स्थान पर वे शरीर छोड़े। तो वहाँ से फिर पितृलोक से आए थे लोग, उनको ले गए जमराज जी के पद पर, पुनः हो गए इतना दिन भजन करके चले गए। नारद जी की बात को सुनकर युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर हो गया कि हमारे पिता की ऐसी शुभ गति होगी, ये होगा, तब तो अब वो गए नहीं, शोक छोड़ दिए। इस तरह से ये अध्याय पूरा हुआ। तो आज व्यास पूर्णिमा है, भगवान वेदव्यास देव का विशेष स्मरण किया जाता है। वैसे मनुष्य समाज तो भूल गया उनके उपकार को। ये श्रीमद् भागवतम, चाहे भगवद गीता, महाभारत, श्रुति स्मृति, जो कुछ भी है भगवान वेदव्यास देव का दिया हुआ है। जैसे भगवान पृथ्वी से बहुत सा उत्पादन देते हैं, लेकिन वो उत्पादन स्टोर में घूम करके आते हैं तो लोग समझते हैं वो स्टोर वाले दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। वास्तव में ये सब बात नहीं, भगवान वेदव्यास देव दिए। और उसमें भी सारा शास्त्र तो दिया ही उन्होंने, समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम दिया। इसको वेद रूप कल्प वृक्ष का पक्का फल कहा गया। और सब ग्रंथ या और सब बात विचार जो है वास्तव में वो वृक्ष है, और ये भागवत फल है। सब चीज का फल है। तो वेद वृक्ष या कर्म वृक्ष या भक्ति वृक्ष, सब छोड़ करके फल खाना चाहिए। पेड़ और टहनियों को गिनने की कोई जरूरत नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन करना, मीटिंग कर करके भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, यही वास्तव में फल है, रिजल्ट। इसके पहले, भागवत बनाने के पहले लोग अन्य शास्त्रों को पढ़ते थे, लेकिन भागवत के बाद नहीं। ये स्वयं भागवतकार भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि पिबत भागवतम रसम, और ग्रंथ के लिए पठत ऐसा कहे हैं, पढ़ो, लेकिन इसको कहते हैं पियो, पिबत। अरे कोई ग्रंथ पिया जाता है तो कहते ग्रंथ है ही नहीं, ये रसम, भागवतम रसम, भगवान कृष्ण का रस है, यह भगवत संबंधी रस है, पियो। कोई कहे कि आखिर उसका छिलका हटाएंगे, उसकी गुठली दूर करेंगे तब न पिएंगे, तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें गुठली है ही नहीं, छिलका है ही नहीं, पियो। कब तक पियो? आलयम, लय पर्यंत, लय का अर्थ मृत्यु पर्यंत पियो, जब तक शरीर नहीं चला जाता है तब तक पियो, अथवा जब तक मुक्त नहीं हो जाते हो तब तक पियो, अथवा मुक्ति पर्यंत पियो, पीते जाओ पीते जाओ। हे पृथ्वी के रसिक रसिकों और भावुकों, जिनके जिनका भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, और जो रस तत्व वेता है उनके लिए मैं रस बना करके दिया। और यह सर्वोच्च शाखा से यह रस आया है, शाखाओं पर लुढ़कता हुआ आया है, एकाएक गिरा नहीं है। गलितम का ये अर्थ है, सुख मुखा दमृत द्रव संजित निगम तर कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम का अर्थ होता है जो लुढ़कती हुई कोई वस्तु आवे, फूटा नहीं है, सर्वोच्च नारायण शाखा से यह तुरंत ब्रह्म शाखा पर आया, ब्रह्मा जी प्राप्त किए, और ब्रह्मा जी उसको ठीक ठीक समझे, ब्रह्म शाखा से नारद शाखा पर आए, नारद शाखा से व्यास शाखा पर आए, और व्यास शाखा से श्री सुखदेव गोस्वामी की शाखा पर आए, और सुखदेव गोस्वामी के बाद धीरे धीरे परीक्षित तब पृथ्वी पर आया है। और फल की तरह गिरा नहीं है कि फूट जाए और बर्बाद हो जाए। बर्बाद होने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं भगवान एकाएक और समझने वाला बेवकूफ आदमी है जो समझे ही नहीं। उसको समझा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को समझाया, फिर नारद जी ने वेदव्यास को समझाया, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को समझाया, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को समझाया। इसलिए इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर समझा जा सकता है ठीक ढंग से। तो इसको पीना चाहिए। भगवान वेदव्यास देव के सारे जीवन की यही सबसे बड़ी कमाई है। वास्तव में इस श्रीमद् भागवतम का मास्टर प्लान नारद जी ने किया। मास्टर प्लान करने वाला होता है ना। तो इसका प्लान उन्होंने किया। भगवान वेदव्यास देव को बताया कि आप ऐसा ग्रंथ रचना कीजिए, और उसके बाद तब भगवान वेदव्यास देव प्रसन्न हो। तो संसार के जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मनीषी हैं, भक्त हैं, सभी भगवान वेदव्यास देव के शिष्य। इन पुस्तकों में क्या हो रहा है कि अब भगवान वेदव्यास देव को कोई जानता भी नहीं। इसी व्यास पूर्णिमा पर सब अपने अपने गुरु को पूजते हैं, लेकिन भगवान का पता ही नहीं उन्होंने कि गुरु जो है उस व्यास जी के एक उच्छिष्ट को बोलता है। भगवान के द्वारा रचे गए, वेदव्यास जी के द्वारा रचे गए एक श्लोक का अर्थ कर देता है तो वाह व्यास जी, वाह व्यास जी, तालियां बजती हैं, धन्य होगा। उसी को व्यास कहा जाता है, व्यास पूजा की जाती है, और व्यास जी का पता ही नहीं है। और ऐसे लोगों की भी व्यास पूजा होती है जो लोग व्यास जी के टोटल विरुद्ध बोलते हैं। व्यास जी तो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान। और कुछ लोग ऐसे हैं जो निराकारवादी हैं, भगवान को मानते ही नहीं, लेकिन उनको भी लोग कहते हैं व्यास जी बैठिए कथा कहिए, और बैठ करके व्यास जी का विरोध कीजिए। ये कौन से व्यास हैं और उनकी पूजा कैसे व्यास पूजा है? हम लोगों को निष्पक्ष भाव से और बहुत गहराई से भगवान वेदव्यास देव को उपकार का स्मरण करना चाहिए। जब उनके ग्रंथों को पढ़ा जाता है तब पता चलता है, खासकर महाभारत, कितना ज्ञान है भगवान का। भगवान है तो फिर ज्ञान का कोई क्या कहना है। जब महाभारत लिखना था तो ये बात होने लगी कौन लिखेगा, तो गणेश जी को तैयार किया गया, गणपति जी को तैयार किया गया, जो सबसे बड़े विद्वान हैं और सबसे तेज लिखते। भगवान वेदव्यास देव उनसे प्रार्थना किए कि आप लिखिए, मैं रचना करूंगा, आप लिखिए, बोलता जाऊंगा। ऐसा नहीं पहले से लिख करके रखे हैं और उसको बोलते जा रहे हैं, नहीं, बोलते जाएंगे और लिखना। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन बीच में आप रुकिएगा तो मैं फिर नहीं लिखूंगा, मेरी लिखनी रुकनी नहीं चाहिए, इतना जल्दी जल्दी आपको श्लोक पेश करना है। तो भगवान ने भी शर्त लगा, कहा ठीक है, किसी भी श्लोक के अर्थ को समझे बिना आप मत लिखिएगा। तो वो तो बहुत फास्ट लिखते हैं, शॉर्ट राइटिंग कुछ लोग सीखते हैं ना, तो गणेश जी तो सबसे बड़े लेखक, तो बहुत जल्दी जल्दी लिख देते थे, लेकिन बीच बीच में भगवान वेदव्यास देव कुछ ऐसे श्लोक बोल देते थे कि उसका अर्थ सोचने में इनको देर हो जाती, तब तक वो 10-20 श्लोक बना लेते थे। कभी रुकना नहीं पड़ा है। नहीं, केवल महाभारत, बाकी स्वयं लिखे। श्रीमद् भागवत उन्होंने स्वयं लिखा, मैच्योर, प्रभुपाद जी कहते अपने मैच्योर दशा में, यदि भगवान के लिए मैच्योर इमैच्योर का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी देखा गया कि भगवान की अंतिम रचना भागवत, समस्त अनुभव समस्त सार भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया। तो ऐसे भगवान के जन्मदिन पर, आविर्भाव दिन पर हमें उनके उपकारों का स्मरण करना चाहिए, और उनकी बातों को यथावत कहने के कारण ही कोई व्यक्ति गुरु होने की योग्यता रखता है, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से दुनिया के जितने भी सच्चे गुरु होंगे, वे सब तो भगवान वेदव्यास देव के शिष्य हुए ना। और कोई भी हो, चाहे प्रभुपाद जी हो, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हो, चाहे वल्लभाचार्य जी हो, चाहे कोई हो, सभी तो वेदव्यास जी के शिष्य। उन्होंने ये ग्रंथ दिया है भागवत, तो उस पर परपोर्ट लिखा जाता है, अनुवाद किया जाता है, व्याख्या की जाती है, सारा जगत उनका शिष्य है वास्तव में, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। भगवान जब सृष्टि करते हैं तो इसके बाद वे मनुष्य को वेद शास्त्र देने के लिए भी अवतार लेते हैं। सब कुछ है वेद में, आयुर्वेद है, मतलब मेडिकल साइंस की पराकाष्ठा है, धनुर्वेद है, औषधि विज्ञान है, अश्व संचालन विद्या, सारी कलाओं का वर्णन वेदों में किया गया है। और सबसे महान विषय है कि भगवान कृष्ण को समझने के लिए सारा वेद लक्ष्य करता है। वेद इष्ट सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेव च। तो भगवान वेदव्यास देव कई रिवीजन करते हैं वेदों की, फिर ब्रह्म सूत्र बनाए, ब्रह्म सूत्र के बाद उन्होंने महाभारत लिखा, महाभारत के बाद फिर भागवत लिखा, उसके पहले पुराण लिखे थे, क्या क्या, सदा जीवों के हित में तत्पर रहे। और भागवत लिखने के बाद तब वे प्रसन्न हो गए, ये अब इससे कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोगों को भागवत पढ़ना चाहिए, और यदि कभी सुनने का अवसर मिलता है तो सब कुछ छोड़ करके सुनना चाहिए। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भागवत पूर्ण अटेंशन के साथ सुनने के लिए ग्रंथ है, और भागवत सुनने पर कुछ भी बाकी नहीं रह सकता है, भगवान में प्रेम उत्पन्न होकर के ही रहता है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो इस भगवान के जन्मदिन पर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कि कृपा करके अपने द्वारा रचित शास्त्रों के तात्पर्य को हम लोगों के हृदय में उदित करें, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़े। आप सब इस कथा में आए, आप सब पर भगवान वेदव्यास देव की कृपा बरसे, कि भागवत के प्राप्तव्य लक्ष्य भगवान कृष्ण मिल जाए, उनका प्रेम मिल जाए। और आप लोग बहुत आदर देते हैं हमको, एक जगह मैं कथा कहने के लिए स्वीकार किया तो लोग कह रहे थे, मैं जब टाइम देता था तो लोग कहते थे नहीं इस समय नहीं, इस समय बिजी टाइम है, तो दूसरा टाइम देता था, फिर ये नहीं बिजी टाइम है। लेकिन यहाँ देखा कि जो मैं टाइम दिया उसी पर आप लोग जुट गए, आप लोगों ने आग्रह नहीं किया कि नहीं इसी समय आओ, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध समय 25 से 31 मई था, लेकिन मैं नहीं आया। उसके बाद मैंने जो टाइम दिया तो ठीक है, उसके बाद फिर 4 दिन टाइम दिया तो ठीक है। तो यह आप लोगों का गुण है वास्तव में, इसका मतलब है कि लालसा है, जब समय मिले तब भाई पियो। सुनो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, भगवान कृष्ण में हम सबकी मति लगी रहे, यही प्रार्थना है। हाँ, जो लोग लिखे हैं पढ़े, दो चार चार मिनट। भगवान वेदव्यास देव का भी स्मरण करना चाहिए। प्रश्न में तो फिर टाइम लग जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा अनुमोदन। वो भी भगवान वेदव्यास देव ही फैलाए, हर एक युगों में भगवान होते हैं, सब समय वो एक ही स्वरूप में नहीं होते हैं, लेकिन उनका नाम व्यास होता है। व्यास का अर्थ होता है व्याख्या करने वाला, विस्तार करने वाला, वेद शास्त्र के अर्थ को प्रकाशित करने वाला। आप तो देख रहे हैं कि इस समय जो कथा कहता है उसको भी व्यास कहा जाता है। तो हर एक युग में भगवान आते हैं वेद शास्त्र के अर्थ को समझाने के लिए, भगवान प्रचार करते हैं और ऋषि मुनि सब करते रहते हैं उनके शिष्य, तो इस तरह से सब चलता रहता है। लोगों को बहुत क्लियर ज्ञान रहता है दूसरे युगों में, इतना धुंधलापना नहीं रहता है।
हरे कृष्ण। वेद व्यास प्रिय, वेद व्यास भगवान की जय। श्री राधा गोविंद महाराज की जय। महाराज जी, अपने व्यास जी के बारे में तो हमें बतलाओ ही कि वो भगवान हैं, उन्होंने शास्त्रों के कितने मधुर ढंग से और श्रीमद् भागवत, पर वही भागवत का रसामृत पान जो आपने कराया है वो वास्तव में इतना मीठा है, मतलब हम अपनी तरफ से अपनी बुद्धि से तो ऐसा समझ नहीं सकते थे, पर आपने हम लोगों की बुद्धि में उसे इतनी अच्छी तरह से उतारा, इतनी अच्छी तरह से पान करवाया हम उसे समझ सके। ये वास्तव में आपका बहुत बड़ा गुण है कि आपने यथा विधि जैसा दिया हुआ है उसी रूप में लिया, ऐसा नहीं कि टहनियों का या और किसी ब्रांच का, पर वही मीठा फल जो व्यास जी दे गए हैं और नीचे जी धीरे श्रील प्रभुपाद तक, प्रभुपाद के आप बहुत ही अच्छे शिष्य हैं, आपने यथाविधि जैसे कि प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि जैसे पियान एक लेटर का डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें बिना कुछ अंतर लाए, बिना कुछ परिवर्तन लाए, बिना कुछ, जैसे व्यास जी ने कहा वैसा का वैसा ही सभी अंगों के साथ में सभी और बड़े रसमय रूप में हमें सब सिखाया है, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये मात्र एक छोटी सी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम संसार में इस तरह से डूब रहे हैं, इस तरह से कई तरह की भावनाओं से, कई तरह के लोगों से, कई तरह की चापलूसियां, कई तरह के शरीर में पड़ करके या शरीर को ही अपना स्वयं मान करके, और उसके आपने ये जो बंधन मोक्ष की बातें कही नारद मुनि के उदाहरण के द्वारा, नारद मुनि ने जैसे युधिष्ठिर महाराज के जैसे समझाया था, पर आपने बड़े ही सरस रूप में ये संसार से विमोचन कैसे होना, क्योंकि हम छोटी छोटी सी बातों के बारे में बड़े दुखी हो जाते हैं, समझते हैं कि यही सब कुछ है, अब तो हमारा सब कुछ गया, अब कुछ रहा ही नहीं, पर आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। जैसे कि कोई एक राजा नग्न था और एक बच्चे ने कहा कि नहीं राजा नग्न है, पर चापलूस वाले करने वाले उसके मंत्रीगण और दूसरे जितने भी हैं मंत्री प्रजा सब कुछ, उनकी पत्नियां, नहीं वाह क्या सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह से, तो इस तरह से कई रूप में वो चापलूसी करते हैं। तो वैसे ही लोगों ने अपने अपने चीटर्स एंड बी चीटेड, तो उस तरह से सब समझाया कि चीट करने वाले संसार में हैं, लूटने वाले हैं, और उन्होंने अलग रूप में समझाया, पर आपने वास्तविक रूप में इस भागवत ग्रंथ को कहा, बड़े सरस रूप में कहा, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस तरह से आप हमें रसामृत पान करवाते रहिए और बार बार आते रहिए, हम पर आप अनुग्रह रखिए, कृपा रखिए, और आपकी कृपा और आशीर्वाद हमें दीजिए कि हमारा मन संसार के बजाय भगवान में लगता रहे, और आपके चरणों में भी हमारा मन रहे कि हम भगवान की ओर तक अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
आज का शुभ दिन गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन पर भगवान व्यासदेव इस लोक में अवतरित हुए थे। वे पराशर मुनि के पुत्र थे और इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। निर्मल भागवत पुराण लिखने के बाद उनको आनंद और शांति मिली थी। उन्हीं की परंपरा में आने वाले श्री प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन स्थापित किया और उन्हीं की परंपरा में हिजोरे राधा को महाराज दिया है, और इनकी मधुर वाणी हम व्यासदेव की रचे हुए भागवत कथा में सुन रहे हैं। तो इस दिन हम सब लोग राधा को महाराज की ऐसी ही पूजा और मान करना चाहिए, जरूरी है, जैसे भगवान व्यासदेव का किया जाता है। शास्त्रों में गुरु के बारे में भगवान की तरफ मान सम्मान पूजा करने के लिए कहा गया है, और हम गुरु अष्टक प्रार्थना में भी हम कहते हैं, गाते हैं, साक्षात हरिपन समस्त शास्त्र युक्त तथा भाग्यत सभी किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। सब शास्त्र और साधु कहते हैं कि गुरु हरि ही है, लेकिन गुरु कहता है कि मैं भगवान का एक प्रियजन हूँ। तो ऐसे प्रियजन की हम लोग भगवान के ऐसे प्रियजन ही हमको भगवान को प्राप्त करवाएंगे। हरि झुलिया राधा गोविंद महाराज ऐसे एक प्रियजन है जो हम जरूर भगवान की प्राप्त करा भगवान को प्राप्त करवाने की मदद करेंगे। तो इनकी कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सके और मदद करते रहे, ये हम चाहते हैं, और उनका पूरे पूरा लाभ देना चाहिए। हरि झुलिया राधा गोविंद महाराज की जय।
Krishna, I'll speak in English because my Hindi is very very poor. So actually, I never thought of today that today we will have to decide for Vyas Purnima. But Maharaj has already spoken. It's a very auspicious day that we could be here and hear person like Radha Govinda Maharaj. To His Holiness Radha Govinda Maharaj, please accept our humble obeisances to your feet. Maharaj, very sweetly and easily you spoke the 4 days of Srimad Bhagavatam in this assembly, in Tohaku temple. You have explicitly revealed the secret of Srimad Bhagavatam, that the soul is hankering only to serve the supreme soul, Lord Sri Krishna, and the body is temporary, which will be destroyed in due course of time. In Srila Rupa Goswami's word, that I'm just now taking his word, verse, Ihajyasya Harirdasya Karmana Manasagira Nikalashyabhya Avastasya Jivanmukta Sa Uchyate. You are epitome of that verse and living by that example. So that shows that how much you have imbibed Srimad Bhagavatam, and Rupa Goswami has actually foretold long before and you are following that. You are able and stunt disciple of Srila A.C. Bhaktivedanta, Srila Prabhupada, through the mature realization of Srimad Bhagavatam and then giving the discourse among us, you are proving that Lord Sri Krishna's order, like in Srimad Bhagavad Gita 1869, everybody knows, Krishna says, Na chotasman manushyeshu kashin me priyakittamaha bhavita na cha me tasma Anna Pietaro Bhavi, that nobody will be dearer who actually speaks about me, and you are speaking that thing. So you are very dear to Sri Krishna. Maharaj, by your discourse of Srimad Bhagavatam, you are dear to Lord Sri Krishna, there is no doubt. We feel it personally. You took so much bodily trouble to come to West despite your difficulties. We know that because you had to stop so many times coming here, but still thinking the poor souls like us, you came and gave the wonderful knowledge. So we are really indebted to you. Please, Maharaj, show your mercy again and again so that we can get relish Sri Krishna's katha, your servant Nanda Dulabha.
I didn't know that I would get time to speak, but I just speak in few words. Just like Parokkarai Bahanti Nadia, Parokkarai Phalanti Vrukshanam. Isi tarah se, jaise Parokkar ke liye hi vrukshon ka janma hota hai, nadia behti hai, vaise aap jaise mahatma Parokkar ke liye hi ghumte hai. Hum logo jaise ka kalyan ke liye hi ghumte hai, aur humko Bhagavat katha rupi amrut ka paan kara ke hamare kai sansayon ko dur karte hai. और हमको इतना वो भागवत कथा में रुचि पैदा करते हैं कि हम संसार को भूल जाए, और वही संपूर्ण आनंद है, वही जगत का सच्चा आनंद है. और वैसे ही ये भागवत कथा मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण की कथा है जो अति से पुण्यकारिणी पवित्र है और वो दिशाओं का अमंगल दूर करती है, मंगलकारिणी है यह कथा, जिसको सब लोग वृंदावन में भी गाते रहते थे। जब माता जसोदा वलवणा करती थी तब वो यही कृष्ण की जितनी भी क्रीड़ा उस तक की हुई थी वो ही गाती रहती थी और गोपियां भी वो ही गाती रहती थी सुबह में जब वलवणा करती थी। तो इतनी पुण्यकारिणी ये कथा है कि वो सबके मन को आनंद करती है। तो हम कहते हैं कि आप जैसे ये कथा को इसी तरह से हमको समझाते हैं, ऐसे एक एक शब्द को ऐसे बताते हैं कि हमको जैसे हम लीला स्थली पे ही है और हम सुन नहीं रहे, हम देख रहे, ऐसे हमको महसूस हो रहा है, जैसे ऐसे हमको लग रहा है। बस अब प्रॉब्लम एक ही है कि इतनी छोटी कथा सुन के हमको संतोष नहीं है, हमको लग रहा है कि हमको पूरा भागवत सुनना है आपसे और भगवान श्री कृष्ण हमारी इस इच्छा को पूरी करे।
परम पूज्य है होलीनेस राधा गोविंद स्वामी जी महाराज, आपका अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आपके अनुशंसा के लिए प्रयुक्त शब्दों के चुनाव में हम असहाय अनुभव आप नहीं आ रहे हैं तो लगा कि इस बार हम भगवान की कथा न सुन पाएंगे। आपने हम लोगों के लिए समय निकालकर भगवत कथा सुनाई और इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अनुग्रह करते हैं कि अगले साल आप पुनः आए और भगवत रूपी कथा से हमारी आत्मा को पुनः भगवत प्रेम की प्रेरणा दे। आपका सेवक रामानुज दास।
हम पूज्य राधा गोविंद महाराज, आज गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के दिन पर हम भाग्यशाली है कि इस साल आप हमारे साथ है और हमको सुंदर भागवत कथा का श्रवण का मौका मिला है। इस भागवत कथा आपको जो धृतराष्ट्र महाराज का स्थिति बताए उनमें से खूब सीखना मिले। सुत गोस्वामी का शब्द है, एवं गृहेशु शक्तानाम प्रमात्तनाम तद इहय अत्यक्रमाद अविज्ञात काला परम दुष्कर। इसका ट्रांसलेशन, इनसरमाउंटेबल इटर्नल टाइम imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs. Sutta Goswami ka shabda pura satya lagta hai. Avijnanata, hamein gnan bina param dushtara, jisko koi ruk nahi sake, kal humko bhi samapt kar denge. Vidur aise bhi bola hai ke nirgamyatam abhi immediately sigraham, kuch der karne bina bhajan mein lag ja. कितनी सुंदर सलाह एडवाइस है। महाराज इस साल आपका यहाँ 9 दिन की कथा हुई परंतु हम और शायद कुछ लोग को भी संतोष नहीं हुआ। अभी तो ऐसा लगता है कि अभी कथा की शुरुआत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, अभी तो आपको हमको एपेटाइजर दिया खाली। अभी तो सुनना का रस लगा और पूर्णाहुति हो गई और आप यहाँ के कल चले जाएंगे। कोई बात नहीं महाराज, जिस सेकंड क्लास देश में फ्रिज जैसे माता है और टेलीविजन जैसे पिता है, इस देश में एक गुण भी है कि यहाँ कैसेट प्लेयर जैसा गुरु भी है। इसलिए महाराज अगले साल यहाँ कुछ और दिन कथा करने की हमारी प्रार्थना है। भगवान आपका शरीर स्वस्थ रखे और खूब लंबा आयु दे। और भी प्रार्थना है कि आप विदुर की जैसे हम जैसा अंधा को बारंबार जगने के लिए आप आ जाए। हमें और राधा रानी तरफ से कुछ भूल हुई और आपकी सेवा में कुछ खामी हुई तो जरूर माफ करना। आपका नरधम दास निर्मल। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। एक्चुअली मैंने पिछली बार जब महाराज आप आए थे कुछ एक महीने पहले, तब मैंने लिखा था पर ना मैं पढ़ सका ना आपको दे सका था, तो वो ही लेटर मैं कैरी कर रहा था अपने साथ और आज मैं पढ़ सकता हूँ। श्री श्री गौड़ नेता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मैं हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर साल की तरह महाराज इस साल भी यहाँ आए और इतनी सुंदर कथा कही। महाराज जिस तरह से सुध गोस्वामी के वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, कई बार ऐसा लगा कि वो पास्ट टाइम्स हमारे सामने हो रहा है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि 5 दिन तक लोग रेडियो को अपने कानों पर लगाकर क्रिकेट का खेल सुनते हैं और वो खेल का कमेंट्री देने वाला इतने अच्छे से खेल को बताता है कि मानो वो खेल आप देख रहे हो। वैसे ही महाराज की भागवतम की कमेंट्री इतनी अच्छी और डिटेल में थी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सुबह को जब कभी मैं भागवतम क्लासेस अटेंड करता हूं तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होने के कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि कब 8:30 बजेंगे और प्रसाद मिलेगा। पर यह पूरा वीक ऐसा लग रहा था कि 8:30 बजे ही नहीं और महाराज की कथा सुनते रहे। फाइनली हमें कृष्णा से प्रार्थना है कि फ्यूचर में हम इंडिया जाकर महाराज की कथा को कोई धाम में सुन सके। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। परम पूजनीय महाराज के जन्म में मेरा फादर का नाम कृपा हो। इस बार आपने कथा में बताया कि परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में जो ब्राह्मणों ने बताया तो ये बात का पता चला कि हर एक कुल में सबसे उत्तम कौन था। जैसे कि विभिन्न कुलों में परीक्षित महाराज भगवान राम की तरह वचनबद्ध होंगे, श्री जी की जैसे शरणागत होंगे, करने करने गर्व के समान होंगे। शिव पुत्र के समान होंगे, दूसरे के प्रति कृपा करने में भगवान शिव की तरह होंगे। और पहली बार ये पता चला कि भगवान शंकर का नाम आशुतोष किस लिए है। और मक्तम भक्ति में प्रहलाद की तरह होंगे, ये सब बातें इस बार पहली बार मुझे पता चली कि हर एक गुण में सबसे उत्तम कौन है। दूसरी बात, आपने दो प्रकार के भक्तों की या जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं उसमें नरोत्तम और धीर व्यक्ति दोनों की बात की। इसमें धृतराष्ट्र को विदुर जी धीर बनने को कह रहे हैं क्योंकि उनका मौका नरोत्तम बनने का चला गया था, जो हमारा भी चला गया। और शायद धीर बनने की भी थोड़ा सा ज्ञान या समझ आ जाए तो वो बहुत होगी। और आपने ये अभिमान क्या है उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की। आज तक मुझे था कि अभिमान इज प्राइड बट इट्स नॉट प्राइड। मैं हूँ और ये मेरा है, इसका जो ज्ञान रहता है वो अभिमान है और वही बंधन करता है। ये बात आपकी कथा से मुझे मालूम हुई। और आपने एक बहुत अच्छी बात की थी जो मेरे मन में बहुत जोरों से उतर के वो थी कि आपने कहा था कि कथा ज्ञान देने वाले में और लेने वाले में दोनों में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं ये बार बार देखती आई हूँ लास्ट 3 इयर्स कि आप में बहुत श्रद्धा है, इसलिए आप हमें ये कथा सुना रहे हैं और ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। हम इतने अनाड़ी हैं, इतने ना समझ हैं, फिर भी आप में श्रद्धा है। और बस यही प्रार्थना है कि हमें ये श्रद्धा बनी रहे कि हम ये ज्ञान लें जितना बने उससे उतना ज्यादा नहीं। और महाराज आप हम पर स्नेह कभी कम मत करना। हम आपके बहुत रोई हैं, आपने हम पर बहुत कृपा रखी है, बहुत करुणा की है, बस इसे बनाए रखना।
परम पूज्य श्री राधा गोविंद जी महाराज एवं उपस्थित समस्त बहनों और भ्राताओं, जय श्री कृष्ण। पूज्य पाठ की ये बड़ी अनुकंपा रही कि हमारे अपराधों को क्षमा कर आपने पुनः अपने दर्शनों का तथा विश्रामत का लाभ प्रदान किया। हम तो अपराधी हैं ही, सो आपकी कृपा की प्रार्थना कर हमें नरोत्तम बनने का मार्ग पर अग्रसित करने की तो बात हम सोच भी नहीं सकते, किंतु दीनहीन भाव से ऐसी कृपा की प्रार्थना अवश्य करना चाहेंगे कि कम से कम हम धीर होने का आशीर्वाद अवश्य दे दें। हमें यह आत्मविश्वास है कि पूज्यपाद हमारी दीनहीन भावनाओं को समझकर हम पर कृपा भाव अवश्य बनाए रखेंगे, ताकि बारंबार आपका सानिध्य प्राप्त करते हुए हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। प्रभु चरणों में हमारा भक्तिभाव जागृत हो तथा हम धीर बनने की प्रथम सीढ़ी तक पहुंच पाने की योग्यता प्राप्त कर सके। बारंबार आपके अनुकंपा की प्रार्थना एवं कामना करते हुए आपके चरणों का दास मनमोहन दास।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापोत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो परम कल्याण नमो परम मंगल वासुदेवाय शांताय जगन्नाथपते नमः। परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज, आपके परम पावन श्री चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। श्री श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरणों के सादर कोटि कोटि मेरा प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में सहस्र सहस्र प्रणाम। महाराज, आपने बहुत ही सुललित भाषा में भगवान की दिव्य अलौकिक कथा को सुनाने हमारा जीवन धन्य हो गया। हम कृत कृत हुए। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणिपात करती हूँ। श्री कृष्ण चरित कथा अमूल्य है और ये आदि अंत शून्य है। महासागर अमृत के सागर है। आपकी कृपा से ही कभी आपकी कृपा से ही यदि उस अमृत सागर के एक कण स्पर्श कर सकूं जीवन धन्य हो जाएगा। और आपके इस ऋणी आपकी ये ऋण कभी भी इस जीवन में हम उतार नहीं सकेंगे। मैं जानती नहीं किस सौभाग्य से इस अमृत को हम पान किए। ये परम अचिंत्य श्री हरि का ही विशेष कृपा है जो आपके द्वारा हमें मिले। मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर प्रणाम करती हूँ जिन्होंने निपट भौतिकतावादियों के लिए, जो संसार के गहन अंधकारमय भोगों को पार करने के लिए संघर्ष में है, अनुकंपा करने करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा सुनाया। महाराज, आप भी उसी परंपरा में हमें इस ज्ञान को, भक्ति और वैराग्य को दिए हैं, दान किए। अब आपसे ही आशीर्वाद प्रार्थना भी करती हूँ कि उस ज्ञान, भक्ति और वैराग्य पथ पर चल सकूं और श्री कृष्ण की श्री चरण प्राप्त हो सकूं। महाराज, आपने बार बार यही कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र पूज्य हैं। भगवान नित्य हैं, सनातन हैं और जीवों से भगवान का संबंध भी नित्य है। अपनी प्रेममयी सेवा द्वारा भगवान को प्रसन्न करें, यही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। आप प्रति वर्ष इसी तरह हमारे बीच आते रहिए और हमें इसी का ख्याल देते ही रहिए। आपसे प्रार्थना है पुनः आप इधर आइए और पुनः श्री कृष्ण की दिव्य कथा रस हमें पान कराइए, हम अधम दासी हैं सावित्री देवी की।
वंदनीय श्री राधा गोविंद जी महाराज, समीप प्रभु जी और अन्य भक्तगण, कोटि कोटि वंदन। आपने चार दिन से गीता ज्ञान की सरिता बहाई है, उसमें सब भक्तजन तरबोल हो गए हैं। आपकी यह कृपा के लिए हमारा सबका कोटि कोटि वंदन। आज के भौतिक समय में यह ज्ञान अत्यंत जरूरी है। आपने सच्ची कहा है कि आज के जमाने में फ्रिज माता है और टीवी पिता है। आपने सब लोगों का भौतिकवाद में डूबते हुए आपके वक्तव्य से बचाया है। परम भक्त परमानंद ठाकुर ने सिन्हाजी बाबा के अष्ट सखा में से एक थे, उन्होंने वृंदावन एयरपोर्ट के बारे में सच कहा है। क्यों बे हम वृंदावन, क्यों बे हम निवास गोवर्धन पर निरखत नंद किशोर, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर क्यों न भये भंसी कुल सजनी अधर पीबत गन गो, क्यों न भये गुंजावन बेली, क्यों न भये गुंजावन बेली रहत श्याम झुकियो वृंदावन, क्यों न भये हम मोर क्यों न भये मकराकुट कुंडल श्याम श्रवण जप जो, परमानंद दास कोठाकुर परमानंद दास कोठाकुर गोपी लके चीत चोर, वृंदावन क्यों न भये हम मोर।
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज, हम आपके खूब आभारी हैं। आपने हमको, हम लोगों को भागवत कथा का रसपान कराया। हमने तो मात्र दो ही दिन कथा सुनी है महाराज, परंतु हमने बहुत कुछ सीखा है और हमको बहुत सुख मिला है। आपने बताया कि किसको पूछो कि कैसे हो, सब लोग जवाब देंगे किसको भी बोला फाइन, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी टॉक इन अमेरिका एंड सम। सो इफ यू सी ऑन देयर फेस, आप उसको मुंह को देखेगा तो आपको लगेगा कि वो झूठ बोलता है। और कोई लोग सच्चे होते हैं बोलेगा नॉट सो फाइन, नॉट सो गुड, फिर भी मालूम होता है कि उसको भी कुछ दुख है। तो सच्ची बात तो यह है कि हरि का नाम जो रहता है उसके मुंह में खुशी होता है और वो सुखी लगता है। आपने हरि नाम का जो महिमा बताया इस तरह एकदम सिंपल भाषा में, विच इज एवरीबडी को अप्रिशिएट लाइक दैट। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कल्वो नाश्चैव 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 गच्छन्तिताम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज।
मैं तो 4 साल से आपका टेप सुन रही हूँ। मेरे दोस्त भिजवा देते ओहायो में गिफ्ट एज गिफ्ट, फिर मैं तो अब दर्शन भी मुझको मिल गया। तो कल मैं मेरे दोस्त को कह रही थी कि जब ये दर्शन मिलना एक पुण्य है, और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि आप समझते हैं, हमको समझाते हैं कि भगवान हमारे असली माता पिता है और वो हमको पालन करते हैं, और कैसे देह को शरीर से प्राण निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमको मेरे मृत्यु के बारे में सोचना है। तो इसलिए मुझको बहुत धन्यवाद है आपके श्री चरणों में।
अनेक भावनाएं दूर हुई, सरल भावना में देश আপনি এইরকম সুন্দরভাবে এরকম সরলভাবে ভাগবত পাঠ করে শোনালেন, তা বুঝতে সম্পূর্ণ সহজ হয়েছে। তাই আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে আপনার স্বাস্থ্য ঠিক রহে আর আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এই প্রার্থনা করি। আপনার চরণের দাস রাধামোহন।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सभी भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम है। ऐसे लगता है जैसे महाराज इंडिया से आते हैं तो हमारे लिए सब कुछ लेके आते हैं, हरिद्वार लेके आते हैं, द्वारका लेके आते हैं, हस्तिनापुर लेके आते हैं, सब कुछ साथ में लेके आते हैं और साथ में वृंदावन भी लेके आते हैं। वृंदावन के कृष्ण बलराम को लेके आते हैं, राधा रानी को, उनकी सखियों को लेके आते हैं, नंदगांव को लेके आते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा को ले उनके हृदय में बसा के लेके आते हैं और हमारे पास छोड़ दी जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि बस उन्हें पाले, उनकी भक्ति करे जैसे महाराज ने बताया उसे, और हमारी भक्ति लता हमेशा फूली फली रखे। वही महाराज करते हैं, जब तक महाराज आते हैं तब तक मुझे ऐसे लगता है कि हमारी भक्ति लता सूखते जाती है और महाराज आते ही उनकी भगवत कथा सुनते ही ऐसे लगता है कि अपनी भक्ति लता फूलने फलने लगती है। यही महाराज की बड़ी कृपा है और इसके लिए मैं महाराज का बड़ा ही आभारी हूँ। बड़ा आनंद होता है महाराज आने के बाद में और भागवत कथा सुनने के बाद में, और मैं महाराज से यही विनती करता हूँ कि ऐसी कृपा हम पे महाराज की बनी रहे और महाराज का मुझे और मेरे कुटुंब पे आशीर्वाद बना रहे कि हमारी भक्ति लता हमेशा फूली फली रहे। यही आशीर्वाद चाहता हूँ और आप सब भक्तों से भी मैं यही विनती करता हूँ कि आपका भी आशीर्वाद रहे जिसमें हम भक्ति में अग्रसर होते रहे। हरे कृष्ण।
अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काम की माँ पुराण भगवत निर्मल सुकम कवि दलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस निदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान पान की कलिमल मथन के ताप निवारिन जन्म मृत्यु भय भव भयारिन सेवत सतत सकल सुखकारिन सोमहर सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिन विमग विरास विवेक विलासिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की परम हंस मुनि मन उल्लासिन रसिकर दय रस राज विलासिन भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।